Salatu ve selam ala şerefil enbiya'i vel mursalin. Habibi kulubina ve tabibi nefusina abil kasim Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Ve salatu ve selam ala ahli beytihi tayyibin, tahirin, ma'sumin, mazlumin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in. Amma ba'd, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. پچھلے تین درسوں کے اندر جو ہم نے موضوعات یا جو کتاب کے اندر لکھے ہوئے موضوع تھے اس کے اوپر جو بحث کی, اس کے اندر ایک موضوع تقویٰ کا تھا. تقویٰ کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ تقویٰ انسان کی طاقت کو کہتے ہیں. انسان کے اندر دو قسم کی طاقتیں ہیں, ایک طاقت اس کے جسم کی ہے اور ایک طاقت اس کے روح کی ہے. انسان کے جسم کی طاقت کا بھی پیمانہ ہے اور انسان کے روح کی طاقت کا بھی پیمانہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے جسم کے اندر کتنی طاقت ہے آپ کو نہ پتا ہو. بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ آپ جب کرتے ہیں اور اگر وہ آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے, اور بہت سارے کام ہیں جو آپ نہیں کر پاتے تو اس سے بھی انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے. اسی طرح سے انسان کی روح کا بھی ہے کہ اگر انسان دیکھے کہ اعمال مثلا جو ہمارے واجبات ہیں وہ ہم ادا نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے انسان کی روح کے اندر طاقت نہیں ہے اتنی. یا مستحبات ہیں وہ کبھی انجام دیتے ہوتے تھے کبھی اب نہیں دیتے, تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ ہماری جو طاقت ہے اس میں کمی آ گئی. اور ہوتا یہ ہے کہ انسان کی نفس کے اندر, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے الہام کر دیا ہے تقویٰ کے بارے میں بھی اور فجور کے بارے میں بھی, یعنی گناہوں کے بارے میں بھی اس کو الہام کر دیا ہے اور اس تقویٰ وہ جو روح کی طاقت ہے اس کے اوپر بھی اس نے اسے الہام کر دیا ہے. تو انسان کے اندر یہ دونوں جنگیں ہو رہی ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کمزور ہے. انسان کسی نہ کسی پہلو میں جب یعنی طاقتور بن جاتا ہے تو دوسرے پہلو میں وہ شکست کھا جاتا ہے. یعنی اگر اس کی روح کی طاقت بڑھ جائے تو شیطان شکست کھاتا ہے, اور اگر اس کی نفس کی, اس کے فجور کی, اس کے شہوت کی, اس کے ہوائی نفس کی طاقت بڑھ جائے تو پھر خدا کی اطاعت جو ہے وہ شکست کھا جاتی ہے. تو یہ جو بیٹل ہے ہمارے اندر یہ چل رہی ہے, اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم جو یہ طاقت ہے خدا کی اطاعت کی اور اس کی محبت کی اور خوف خدا کی طاقت کو بڑھائیں, اور دوسری طاقت کو جو ہے جو کہ ہمارے ہوائی نفس کی پیروی کی ہے اس کو کم کریں. تو ہوگا یہ کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہ بیٹلز جو ہے انسان کے اندر, یہ جو جہاد اکبر ہے یہ چلتا رہے گا تا اس وقت کے کہ انسان جو وار ہے, کیونکہ ایک ہوتا ہے آپ بیٹل جیت جاتے ہیں, ایک ہار جاتے ہیں, ایک جیت جاتے ہیں, ایک ہار جاتے ہیں, ایک جیت جاتے ہیں, لیکن جو وار ہے جو جنگ ہے جو وہ انسان جو ہے وہ جیت جائے گا اگر وہ اس کوشش کے اندر لگا رہے. جہاد جہد سے ہے اور جہد کہتے ہیں کوشش کو. تو جو شخص کوشش نہیں کر رہا اس کو آپ مجاہد نہیں کہہ سکتے. جو شخص کوشش کر رہا ہے اسی کو آپ مجاہد کہہ سکتے ہیں. اور جو مجاہد ہے یا تو وہ جہاد اکبر میں ہے یا وہ جہاد صغیرہ کے اندر ہے. جہاد اصغر میں بھی ہے اگر وہ, تو اس کو بھی آپ مجاہد کریں گے. اکبر کا ہے تو اس کو بھی آپ مجاہد کریں گے, لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ اسے کوشش کرنی ہے. اگر کوشش نہیں وہ کر رہا تو اس کو آپ مجاہد نہیں کہہ سکتے. تو یہ چھوٹی سی بحث تھی تقویٰ کے حوالے سے. ایک اور بحث تھی کہ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ گناہ نہ کریں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اچھے کام انجام دیں, لیکن اس سے زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ گناہ نہ کریں. کیونکہ جو اچھے کام ہم نے انجام دیے اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ اچھے ہمارے کام ضائع ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان اگر مثلا 10 کام آپ نے اچھے کیے, اگر آپ ان 10 کاموں کو بچا کر لے جاتے ہیں نا تو آپ آخرت کے اندر سربلند ہیں. ایک شخص ہے اس نے 100,000 اچھے کام کیے, لیکن وہ 100,000 کے سارے کے کاموں کو جو ہے وہ ضائع کر کے اگر اس دنیا سے جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے تو وہ سرنگون ہے. بشک کہ اس نے بہت زیادہ وقت گزارا ہے, اچھے اچھے کام کیے اور سب کچھ. تو یہ دوسری بات تھی. تیسری بات یہ تھی کہ ہم جو کہ شیعان اہل البیت علیہم السلام ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں, ان کے پیرو ہیں, ان کی محبت رکھتے ہیں, تو ہمارے لیے گناہوں کا اور شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے, یعنی یہ کہ ہمیں شفاعت ملے گی انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اس کے ہم نے دو پہلو بتائے تھے. ایک پہلو یہ تھا کہ اسی دنیا کے اندر جس چیز سے آپ ہدایت پا رہے ہیں وہ آپ کے شفیع ہے. جو چیز آپ کو اس دنیا میں ہدایت دے رہی ہے, وہ توبہ ہو, درس ہو, انسان کی صدق نیت ہو, انسان کے اچھے اعمال ہوں, امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ ہو, صحیفہ سجادیہ ہو, دعائے کمیل ہو, جو بھی چیز آپ کی زندگی کے اندر آپ کو ہدایت دے رہی ہے وہ آپ کا شفیع ہے. और उसका जो असर है वो आप रोजे माशर में देख पाएंगे। यानी इस दुनिया के अंदर हम उस असर को नहीं देख पाते, ना हम गुनाह के असर को देख पाते हैं, ना ही हम एक हिदायत को, एक अच्छे काम के असर को देख पाते हैं। तो वो एक पहलू था। दूसरा पहलू ये था कि इंसान क्योंकि गुनाह करता है, जुलूमन व जहूला का जो दो लकब हमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने शुरू से दे दिए, वो उसका ये कि भाई हम जालिम भी और जाहिल भी। जालिम इस हवाले से कि हम सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो अपने आप के, दूसरों के तो हम इतने दुश्मन नहीं हैं लेकिन सबसे बड़े दुश्मन हम अपने आप के हैं। और सबसे ज्यादा जुल्म भी हम किसके ऊपर करते हैं? अपने आप पे। यानी अगर कोई जालिम किसी दूसरे पे भी जुल्म कर रहे हैं ना, तो वो दरहकीकत में अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि जालिम को उस चीज का जो जुल्म कर रहा है उसका उसने अपनी कब्र में जाना है। जो मजलूम है वो हो सकता है उस जालिम के वसीले से खुदा के ऊपर अगर कंप्लेन ना करें और अपनी अपने आप को स्टेडफास्ट रखे और वो अपने आप को आगे बढ़ाता रहे, तो उसके लिए आखिरत में एक अच्छा अंजाम हो। तो जालिम हो यानी हम खुद अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं, और जाहिल ये कि हम यानी भूले हुए हैं, हम जानते हुए भी भूले हुए। एक जहल ये होता है कि इंसान किसी चीज को नहीं जानता, वो कोई बुरी चीज नहीं है, वो जब नहीं जानता बिलाखरे उसको हासिल करता है इनको और वो जान जाता है। इधर जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये जहूला कर जो इस्तेमाल किया वो ये है कि जानते हुए इंसान जाहिल है, जानते हुए जाहिल है। अब हम गफलत में जब चले जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं, जानते हैं कि हमें नमाज पढ़नी लेकिन नहीं पढ़ते, जानते हैं कि गीबत नहीं करनी लेकिन गीबत करते हैं, जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना लेकिन झूठ बोलते हैं। तो इस हवाले से जब हम गफलत में चले जाते हैं तो हम खुदा की नाफरमानी करते हैं और फिर अपने आप के लिए अजाब इलाही जो है वो मोल ले लेते हैं। और साथ साथ में जाहिल होने के साथ साथ ये भी है कि कई दफा इंसान हालांकि जानता होता है लेकिन वो खुद भूल जाता है, ना कि किसी सुनियत के साथ, बस ये कि वो भूल गया। तो अब अगर बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जिसको मैं भूल गया हूँ, जिसकी कि मैं माफी नहीं मांग सका, अगर याद आ जाए तो मैं उसकी जरूर माफी मांगू, मैं कोशिश करता रहा लेकिन बिलाखिर इंसान भूल जाता है। तो शफात के हवाले से ये है कि वो गुनाह जो हम भूल बैठे उनकी जो माफी है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी की हस्तियां हमको दे सकती हैं, ये उनका रुतबा है, ये उनका मकाम है और वो हमें मिल सकता है। इस हवाले से ये दोनों पहलू हमारे अकीदे का हिस्सा है, ये कि भाई गुनाह करते जाओ और ये कि हम बच जाएंगे बगैर किसी जिद्दोजहद के, बगैर खुदा की इताअत के, बगैर खौफ खुदा लाए, बगैर तौबा किए हुए, ये हमारे अकीदे का हिस्सा नहीं है। तो तीसरी बात ये हुई थी कि मोहब्बत जो है वो सबसे ज्यादा इंसान को मोटिवेट करती है कि वो उस चीज से, उस शख्स के साथ जिससे मोहब्बत करता हो उसकी वो इताअत करे। और मुहिब का जो रुतबा है वो बहुत बड़ा रुतबा है। अगर कोई वाकई अहलुल बैत अलैहिस्सलाम का मुहिब बन जाए तो आइमा अलैहिस्सलाम की हदीसों की रोशनी में हो ही नहीं सकता कि वो गुनाह करे, हो ही नहीं सकता कि वो उसके अंदर इतनी जुरत आ जाए कि वो अपने मौला की कोई नाफरमानी करे। तो अब ये जो सिलसिला गुजरा उस हद तक, अगर आपको याद हो हमने कि आपको आखिर में एक वाकया बताया था सैयद हुमैरी का, कि वो एक बहुत बड़े पोएट थे, अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी रूह को उनके दरजात को बुलंद करे। उन्होंने जब इंतजार का उनका आलम था, जब वो मरने वाले थे तो उनके चेहरे पे एक काला धब्बा शुरू हुआ जो कि पूरा चेहरा उनका उस काला हाट से जो है वो भर गया और तकलीफ में, बहुत ज्यादा तकलीफ में बेहोश हो गए। और जब वो बेहोश हुए तो उनके इर्द गिर्द जितने लोग थे उन्होंने जब इस हाल को देखा कि ये अली का मानने वाला, उसके अंदर कुछ लोग मानते थे अहले बैत अलैहिस्सलाम को, कुछ नहीं थे। तो जो नहीं मानते थे उनके लिए तो हमेशा, ये जो नहीं मानते ना वो हमेशा इस तरह के मौकों की तलाश में होते हैं। जलजला आ जाता है ईरान में, कहते हैं जी देखे, कोई ऐसा मसला हो जाता है वो कहते हैं जी ये देखें, वो कोई ना कोई ये यानी उनको ये चीज चाहिए होती है। तो उन्होंने जब सैयद का ये हाल देखा तो वो कहने लगे ये बड़े अहले बैत अलैहिस्सलाम से प्यार करता था, मोहब्बत करता था, सीधे पड़ता था, इसका देखो अब क्या हाल हो रहा है। तो सैयद को जब होश आए उन्होंने नजफ अशरफ की तरफ अपना रुख किया और इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि या मौला आप तो मरकज हैं उन लोगों के जिनको की मदद चाहिए, और मैं आपका मानने वाला हूँ, मैं आपका डिवोटी हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आया आप हमारे साथ ऐसा हाल करेंगे। यानी उन्होंने इमाम से इस बात को इस्तखासा किया, ना कि कंप्लेन की, कंप्लेन नहीं की, उन्होंने इस्तखासा किया कि मौला यहाँ पे जो आपके मानने वाले नहीं है, उनके जेहन में कि मौला यहाँ पे जो आपके मानने वाले नहीं है वो अब खुश हो रहे हैं इस बात पे कि मेरी जो हालत है। हालांकि उनके लिए अल्लाह सुब्हान व तआला उनको प्योरीफाई कर रहा था, उनके जितने भी गुनाह बच गए थे उसकी प्योरिटी थी वो। तो आपको बताया कि ये जो हमारे लिए मुश्किलात आती हैं ये बहुत बड़ी नेमत होती हैं, क्योंकि इस मुश्किल से जब हम गुजरते हैं तो जो हमने गुनाह किए होते हैं ना हम उससे पाक हो जाते हैं, और ये पाकी जो है बेहतर है उस पाकी के जो हमें कब्र में मिलेगी या बरजख में मिलेगी या रोजे माशर में मिलेगी या जहन्नम में मिलेगी। ये यहाँ पे पाक हो जाना जो है वो बेहतर है बजाय इसके कि हम उधर हमें अजाब मिले। तो सैयद को जब ऐसे हुआ उन्होंने इस्तखासा किया दो दफा का, तो उनका पूरा जो चेहरा चेहरा काला हो चुका था वो वापस जो है उसके अंदर नूर आ गया और वो सफेद हो गया। तो सैयद ने जो है वो कहा कसीदा में कहा कि ये जो मेरे साथ हुआ है ये मैं खुशखबरी बता रहा हूँ उन सब लोगों को कि जो इमाम अली अलैहि सलाम के मानने वाले हैं, कि आपके अंदर जो है वो जज्बा होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए कि मेरे हाल देखें, मेरा ये हाल हुआ था लेकिन इमाम अली अलैहि सलाम ने मेरी मदद की। तो हमारे पास जो हस्तियां हैं उनका उस प्यार का जो फायदा हमें मिलता है वो ये है कि इंसान जो है वो स्टेडफास्ट बन जाता है, यानी उसके अंदर साबित कदम ही आ जाती है, साबित वो कदम रहता है जब ये जो प्यार है अहले बैत अल-मुशर्रफ। तो यह सब थोड़ी सी जो बातें थी वो हमने की, अब हर चीज़ को हम नहीं दोहरा सकते दोबारा, लेकिन जो जहन में इस वक्त आए खुलासतन वो आपको बता दें। अब आज इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि जो सैयद ने जो बातें बताई ना कि गुनाहाने कबीरा की डेफिनेशन, कि गुनाह कबीरा कहते हैं किसको हैं, और गुनाहाने कबीरा का कुरान के अंदर जो आयात हैं वो इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले अब ये मसला हमारे लिए हल हो चुका है कि भई हम जिनकी जिनको मानने वाले हैं बगैर खुदा की इताअत के हमें कुछ मिलने वाला नहीं, सही खौफ खुदा रख के कुछ हमें मिलने वाला नहीं, हमें ये काम करने, यानी ऐसा नहीं कि अब मान लिया तो बस अब छुट्टी। अब यहाँ के बाद जो है वो अगर ने यहाँ पे अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से चार किस्म के तकवा के बारे में बात की है, उधर से चलते एक तकवा उन्होंने कहा है यानी ताकत। अगर आप इसको मेयार यानी उस ताकत का स्केल समझ लें सही, कि एक बंदा है वो 500 पाउंड मशीन उठा सकता है, एक है 100 पाउंड उठा सकता है, एक है 25 पाउंड उठा सकता है, तो इसको आप स्केल समझ लें। अल्लामा ने कहा है कि एक है कि वो तकवा होता है कि जो कि आपको जो चीजें ममनू है ना उससे बचाता है, इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है कि जो ममनू चीजें इंसान उससे बच जाता है, यानी गुनाहों से वो बच जाता है। दूसरा जो तकवा है वो ये कि जो चीज जिन चीजों में उसे शक होता है कि हो सकता है कि ये हराम हो या ना हराम हो, तो उसके अंदर इतना तकवा होता है कि उन मुश्तबात से जो है वो बचता है। दो, तीसरा ये होता है कि जो कहने ये कि जो हत्ता जो चीजें मुबाह होती हैं, हत्ता जो मुबाह भी होती हैं कि आपने ये कोई काम मतलब ना हराम है ना हलाल है ना ये मुस्तहब है ना मकरूह है, मुबाह है, आपने कोट पहना, इस कोट को आप कौन सा रंग पहनना चाहते थे वो आप कोई भी रंग जो है वो पहन सकते हैं, मुबाह है, आप कलर चूज कर लें। अब आपने मसलन खाना है, खाना मुबाह है मुस्तहब नहीं है, ये जो हम वाजिब खाना क्या है कि अपनी जान खत्म ना हो, यानी जितना अगर अगर एक वो चीनी से मेरी जान बच सकती है ना तो उतनी चीनी खाना मेरे लिए वाजिब है, अपनी जान को बचाना सही। ये खाना खाना मुबाह है सही। अब खाना आपने 3 दफा खाना है, 4 दफा खाना है, 5 दफा खाना है, 6 दफा खाना है, आप बिलाखिर जो है वो खुद डिसाइड करें। लेकिन वो कहते हैं कि वो तीसरे लेवल का तकवा जो मुत्तकीन का उन्होंने इसका नाम दिया है वो ये होता है कि वो हत्ता मुबाह चीजों के अंदर भी जो है वो कम उनको इस्तेमाल करते हैं सही। और आखिर में उनका ये है कि जो चीजें हत्ता मसलन दीन का काम नहीं है, कोई ऐसी चीज चौथी कैटेगरी कि जो दीन का काम नहीं है, मसलन ये है कि कोई अब एक काम की अगर हम मिसाल आपको दे सकें कि क्योंकि लाइन तो हमने खुद कैंची ना दीन और दुनिया वो इल्ला हर काम दीन का ही है, लेकिन मसलन अगर आप किसी काम को कहें कि टीवी देखना दीन का काम नहीं है, टीवी देखना उसके अंदर वक्त इस्तेमाल होता है बिलाखिर, सही। तो चौथे लेवल का ये है कि जो दीन के अंदर काम नहीं है वो भी वो काम नहीं करते ताकि उनका जो वक्त है वो ज़ाया ना हो। मसलन आप घंटा दो घंटा है वो बजाय टीवी देखने के कोई और चीज़ करने के वो शख्स जो है या मुस्तहब काम को अंजाम देगा या वो किसी यानी अपने आप को जो है वो बेहतर करेगा, पुख्ता करेगा, किताब पढ़ेगा, किसी दर्स में शिरकत करेगा, यानी वो काम भी जो है वो छोड़ देते। तो ये चार लेवल्स हैं, इन चार लेवल्स में अगर हम एक भी लेवल पे आ जाएं, कम से कम खुदा की नाफरमानी करना यानी वो चीज़ें जो हमारे लिए हराम की गई हैं वो हम छोड़ दें, तो फिर भी हम आखिरत के अंदर कहीं ना किसी स्टेज पे पहुंच सकते हैं। हमारे साथ होता ही है कि जब हम उलमा के स्पेशली मसना आयतुल्ला जो हैं वो आयतुल्ला बहादुर जिसमें रहमतुल्लाह अलैह वो इस दुनिया से चले गए, उनकी अब जिंदगी के अहवाल और उनकी ज़िंदगी की जो स्टोरी है वो आप बहुत सारी किताबों में पढ़ सकेंगे। अब जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आगा साहब जो हैं वो हर वक्त जो है उनकी एक बदनामा रहा, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, उन्होंने ऐसी करामात दिखाई, उन्होंने मसलन इतनी दिक्कत के साथ मुस्तहबात को अंजाम दिया, तो आपके अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि मैं भी वो काम करूँ। या इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह की आप हालात ज़िंदगी को तो सब चाहते हैं कि मैं इमाम खुमैनी बन जाऊँ, या मसलन शहीद आरिफ की ज़िंदगी के हवाले से कोई किताब पढ़ता है तो वो चाहता है कि मैं शहीद आरिफ बन जाऊँ। अब हम इस तरह से बन नहीं सकते, उन्होंने इन चारों स्टेजेस से गुजर के यानी अपने आप को उस लेवल पर लेकर आए। अता मसलन अब आप उलमा के हवाले से मसलन आगा मुर्तज़ा ज़ैदी हैं या आगा जवाद हैं या आगा जवाद अमली हैं या मसलन ये सब जो उलमा भी हैं इनको भी अगर हम देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम उन जैसे बन जाएं। अब सब उन जैसे बनने के लिए हमें बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ेगा और ये एक रात में एक दिन में जो है ये काम नहीं होगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है और आपको कोशिश जो है वो जारी रखनी पड़ेगी। सलावत पढ़े मोहम्मद। और हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाह के हवाले से उन्होंने अब ये उनके हवाले से उन्होंने कहा कि अगर ये प्यार ही के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने कहा कि अगर एक कदम जो अहलुल बैत अलैहिस्सलाम को प्यार करता है अगर वो गलत उठा ले तो उसका जो प्यार होता है अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के साथ वो क्या करता है कि उसके जो अगर रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया, गलत डायरेक्शन में चला गया तो उसको वापस ले आता है। ये जो है ना कि एहदेना सरात अल मुस्तकीम सरात अल लदीना अनअमत अलैहिम कि हम खुदा से ये दुआ मांगते हैं कि खुदा हमें सीधे रास्ते पे रख। किस रास्ते पे? ये उस रास्ते के ऊपर कि जिन लोगों के ऊपर तूने नेमतें नाजिल की, और नेमतें कौन है? वो कौन से लोग हैं? वो अहलुल बैत अलैहिस्सलाम है। सीधा रास्ता कौन सा है? वो अहलुल बैत अलैहिस्सलाम का रास्ता, खुद वो सरात मुस्तकीम है। अब अगर कोई शख्स अम्मा से प्यार करता है वो अगर कोई गलत रास्ता इख्तियार भी कर लेता है तो क्या होता है कि उनका जो प्यार होता है इंसान को मजबूर करता है कि वो वापस सीधे रास्ते पे आ जाए। नहीं, तो ये भी एक मेयार है, अगर इंसान चाहे कि पता लगे कि हमारे पास वो प्यार है या नहीं है तो अगर गलत काम कर भी लिया तो वापस वो सीधे काम पे आ जाता है। तो जो अम्मा का शिया होता है, जो मानने वाला होता है, जो मुहिब होता है, अगर वो मसलन गीबत कर ले, किसी का दिल दुखा ले या किसी के साथ वो बहस मुबासा में इख्तलाफ रख के उसका किसी तरह से बंदे की तोहीन कर दे माशाल्लाह, तो क्या होता है कि वो जो मोहब्बत होती है अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की वो उसे मजबूर करती है कि उससे माफ़ी मांग ले। उसे कहा कि आगा मैंने आपकी गिबत की, आगा मैंने आपकी तोहीन की, आगा मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दें। और वो क्या होता है कि वो मोहब्बत उसको वापस सीधे रास्ते पर ले आती है। एक और मियार उन्होंने बताया इस प्यार का, उन्होंने कहा कि ये अब बिहार अनवार की हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उन्होंने कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को जो प्यार है ना वो गुनाहों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। यानी उनका प्यार एक ऐसी आग है कि वो आग ऐसी कैसी है जो कि लकड़ी को बिल्कुल खा के राख कर देती है। गुनाहों को इमाम अली अलैहिस्सलाम का प्यार ऐसे खा जाता है। आप देखें कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ जितना इंसान के दिल में प्यार बढ़ेगा ना वो क्या होगा कि उसके गुनाह जो है ना वो ख़त्म होते जाएंगे, और जितना प्यार कम होगा उतने गुनाह बढ़ते जाएंगे। अब जो अली को मानने वाले हैं कैसे हो सकता है कि वो इतनी ज्यादा मोहब्बत रखते हैं और फिर भी उनके पास गुनाह रह जाए? नहीं हो सकता। तो एक और मियार बताया कि अगर आप इमाम अली अलैहिस्सलाम से प्यार करेंगे तो उस प्यार का क्या फायदा आपको पहुंचेगा कि आपके गुनाह जो हैं वो सब जल के राख हो जाएंगे, यानी आपके गुनाह खत्म हो जाएंगे। अलैहिस्सलाम से प्यार जो है वो इंसान को, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि साबित कदम रखता है। और अगर देखा जाए साहब, हमने ना कभी उनको देखा, देखिए ये एक और बात है जो आपको सोचनी चाहिए, हमने ना कभी उनको देखा, ना हम उनके जमाने में थे। 1400 साल गुजर गए या कई सौ साल गुजर गए कि वो इस दुनिया में आए, उन्होंने जिंदगी की और चले गए। अब ये एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो हमारा प्यार है उनके साथ, ये उसको बहुत अजीब लगेगा, उसको बहुत अजीब लगेगा कि भाई ये क्या मामला है, ये क्या मसलन, ये क्या सर्कमस्टांसेस है कि एक शख्स जो 1400 साल पहले आया, ना ये बंदा कभी उसने मिला, ना कभी उसके साथ कोई उसकी बातचीत हुई, ना देखा, ना कुछ और, ना ही उनके बारे में उसको इतना ज्यादा इल्म है, लेकिन उनसे इतना ज्यादा प्यार करता है। तो ये अगर प्यार अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे दिल में डाला है ना, तो इसकी खुद ये एक बहुत बड़ी नेमत है। बेशक के हम, हो सकता है कि इस प्यार के लायक ना हो, कि भाई अल्लाह मियां ने ये हमारे दिल में प्यार डाल दिया, हम इसके लायक नहीं थे, लेकिन ये डाला है उसने, तो हमें इस नेमत का जो है वो फायदा उठाना चाहिए। इस नेमत से जो है वो हमें अपने आप को साबित कदम रखना चाहिए। मुश्किलात के बारे में बात हो गई कि जो मुश्किलात होती हैं वो हमारे लिए अच्छी हैं। आप सोचते होंगे कि क्या मसलन है कि फलसफा है कि लोग आराम की तरफ जाते हैं। ये कहता है कि मैंने नहीं कहा, किताब भी कहती है, दस्तखत भी कहते हैं कि मुश्किलात जो है इंसान के लिए वो अच्छी चीज है। किसी भी मुश्किल को आप कंप्लेन ना करें, जो भी मुश्किल आए उसके ऊपर आप बल्कि खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदाया उसने आपको ये मुश्किल अदा की, कि उस मुश्किल की वजह से अब आप क्या है कि आपको अगर तकलीफ पहुंची तो अब ये जो गुनाह धुल जाएगा, सही। और ये चीज जो है ना, ये जो हमारा अकीदा है, ये सबसे ज्यादा शैतान को जो है ना घबराहट में डालता है। क्यों? क्योंकि वो शैतान क्या चाहता है कि लोगों मुश्किलात जब उनके सर पे आए तो वो अपनी शहवत की परस्ती करते खुदा को भूल जाए। अगर आप देखें कि ये 2012 का जो इन्होंने हवा सा उड़ाया हुआ है ना, ये क्यों है? ये लोगों के दिलों में खौफ डाला है कि यार 2 साल में जो है ना ये जिंदगी, ये जो दुनिया, ये तबाह हो जानी। अब ये जो खौफ है वो क्या करता है, अगर सिर्फ 2 साल रह गए तो करो जो कर सकते हो, यानी जितना अपना आप हवा परस्ती अपनी वो जितनी शहवतों को पूरा कर सकते हो करो, क्योंकि उसके बाद तो फिर दुनिया खत्म है, जो दिल में आता है करो। तो वो ये जो खौफ डाल के तो वो अब लोगों को किस रास्ते के ऊपर लेके जा रहा है, हालांकि दुनिया जो है वो खत्म होने, बंदे को क्या चाहिए कि अगर 2 साल में दुनिया खत्म हो रही है तो मुझे अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो डिफिकल्टीज है ना, ये लोगों के ऊपर डाल के उनके फियर को जो है वो बढ़ा के, तो जो शैतान है वो क्या करता है कि उनको खुदा से दूर कर देता है। जो हमारा अकीदा है, हम डिफिकल्टीज में हम तो उन इमाम को मानते ना कि जैसे जैसे डिफिकल्टीज उनकी ज्यादा हुई, शहादतें ज्यादा हुई, ज्यादा लोगों को वो करबला के मैदान से उठा कर लाते रहे, उनका चेहरा जो है वो और पुरनूर होता रहा और वो खुदा का जो है वो खुदा का शुक्र करते रहे। तो हम तो कहते हैं हमें मुसीबत जो है वो अच्छी लगती, तो शैतान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बात है। हमें अपने आप को जो है वो इस बात पे आमादा करना चाहिए। एक बात जो भी हम आपसे अर्ज करने लगे हैं वो थोड़ा सा किताब के मौजू से हट के नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ ही है। देखिए आप साहब, हम अभी जिस दुनिया में जिंदगी कर रहे हैं ना, अनकरीब है कि बहुत सारे मसाइल हमारे साथ आएंगे, और उन मसाइल को अगर हम नेमत नहीं समझेंगे ना तो हम इसी दरिया में जो है वो बह जाएंगे। अब अगयून भी कहते हैं और बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि आइंदा अगले साल जो है वो काफ़ी हमारे लिए टफ होगा, मसलन मार्च से लेकर सितंबर तक बहुत सारी अजीब वरीब किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या है, हमें अभी से जो है ना वो अपने आप को उस डिफिकल्टीज के लिए प्रिपेयर करना होगा। मसलन अगर मामला कहीं पर ख़राब होता है, सही, मसलन ईरान में मामला ख़राब होता है, कोई मुश्किल हैं, मसलन ये कि अटैक हो जाता है, तो अब आप बताएं कि ये जो मुश्किल हमारे सर पे आने वाली है उसके लिए हमें आया अभी से आमादा होना है या नहीं होना? अगर हम अभी से आमादा नहीं होंगे वो एकदम से हमारे सर पे आ जाएगी तो हम फिर क्या करेंगे? हम बाहर निकलेंगे सड़कों पे जाके, फिर वो आपसे हम बात कर रहे थे कि फिर हमारे नारे होंगे कि स्टॉप द वॉर इन ईरान, या हम कह रहे होंगे कि भाई अब जो है वो हमें जस्टिस चाहिए, पीस चाहिए, ये नारे लग रहे होंगे। तो अब ये जो इतनी बड़ी डिफिकल्टी हमारे ऊपर आने वाली है, आया उसका रद्द अमल यही होगा कि हम सड़कों में बाहर निकल के ये काम करते रहे और फिर भी अपने सारे मामलात को उसी तरह से रखें जैसे पहले थे। अगर तो ये हुआ तो हमारे पास रहेगा क्या, क्या जस्टिफिकेशन बन जाती है? तो ये जो मुश्किलात अभी हमारे पास हैं और आने वाली हैं, इसके लिए हमें आमादा होना पड़ेगा, अभी से अपने अपने अफेयर्स को जो है वो ऑर्गेनाइज कर लें अभी से, कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के दरमियान में अगर कभी भी ऐसा मामला होता है तो हम वहां पे हाजिर हों, हमारी जो है वो उस मुश्किल के अंदर हम भी साथ साथ हों। यहाँ पे बैठ के हम कुछ नहीं कर सकेंगे, यहाँ पे बैठेंगे अभी हमारे लिए मुश्किल हो सकता है कि अभी आके कोई हमें ले जाए और बंद कर दे और फिर हम क्या मौसम क्या कर लेंगे, अभी हमारे लिए मुश्किल आते हैं, उनको रीजन भी नहीं चाहिए। तो यह कि अभी से जो है ना अपने आप को उन मुश्किलात के लिए पूरा करें, क्योंकि उन मुश्किलों से जब हम गुजरेंगे तो जाहिर है कि जब इस दुनिया से जाएंगे तो क्या होंगे, बिल्कुल मासूम की तरह जाएंगे, पाक साफ होके जाएंगे। और बेहतर है कि हम पाक साफ होके जाएं बजाय इसके कि बरजख में और रोजे माशर में हमें पाक किया जाए। सही, तो अभी जो है ना वक्त को जरा सा समझ लें कि वक्त नजदीक आ गया है। 500 साल का डिफरेंस रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने में और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। जिन लोगों को पता था, वो साइंस के बारे में पता था और पता था कि एक मसीह आने वाला है, उन्होंने क्या किया, उसी मंतके के इर्द गिर्द आके रहने लग गए और कई जनरेशन उनकी रही हैं। हम उस मंतके से दूर से दूरतर हो जा रहे हैं, जिस मंतके में आना है हम उनसे दूर से दूरतर हो जाए। अब ऐसा है कि अगर कल सुबह उठें जी पता लगे तो अब यहां से कौन पैदल चलेगा, किस तरह से हम उधर पहुंच सकेंगे? तो हमें जो है वो यहाँ पे, अब ये कह नहीं कि आसा भी अब हमारा जॉब भी है, ये कुछ भी है, सारा कुछ है, आसा बिल्कुल है, मेरा भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, लेकिन इस मामले के अंदर अभी जो जहन के अंदर चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमें उस मंतके में पहुंचना है। और अगर मसलन ये कि अगर खुदा न खास्ता इमाम नहीं भी आते, हमारा यहाँ पे रहना कोई इबादत नहीं है, हमारा उधर जाके रहना फिर इबादत में शुमार होगा कि हम क्यों उठे थे यहाँ पे। अगर कोई पूछे कि आप क्यों आए, सही, कोई पूछे कि भाई इधर क्यों आ बैठे, हम बड़ी रीजंस देंगे लेकिन उनमें से कोई रीजंस जस्टिफाइबल नहीं बनेगी। मुश्किल है कि कोई एक आध रीजन जस्टिफाइबल बन जाए। उधर जाएंगे कोई पूछे क्यों आए कि भाई मैं आया हूँ इस मंतके में रहूँ कि इमाम का आने का टाइम है, तो ऐसा है कि इमाम आ जाएंगे तो मैं उधर हूँ, इबादत है जितना वक्त भी आप वहां पे गुजार सकें। ये जो बहस ऑलमोस्ट उधर पहुंच गई है जहाँ पे हमें उसको लेकर आना है, एक जो खत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने लिखा है, वो इमाम कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया की और आखिरत की जो आपकी जिंदगी है वो तमाम हो अच्छे अमाल के साथ, यानी आपकी दुनिया की भी जिंदगी और आखिरत भी जो है वो अच्छी उसकी अंजाम हो, अच्छा अंजाम हो, और ये कि जब आपकी रूह को कब्ज किया जाए, जब आपकी रूह को पकड़ा जाए, तो वो ऐसी हालत में होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छी हालत में हो, तो ऐसा करें कि इस दुनिया के अंदर खुदा का की जो बुजुर्गी है ना उसको मान जाएं, यानी खुदा को बुजुर्ग मान जाएं, खुदा को अकबर मान जाएं। हम इस मामले में बहुत कम हैं, हम खुदा को अकबर नहीं मानते, कहते जरूर हैं, कहते बहुत दफा हैं कि खुदा अकबर है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे सामने खुदा से अकबर है, खुदा असगर हो जाता है माशाल्लाह, बहुत सारी चीजें हमारे लिए अकबर हो जाती हैं। इमाम ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत में, तो ये जो अल्लाह अकबर है ना, खुदा की सुपरमेसी को, खुदा के सुपर होने को, सुपर पावर होने को, इसको मान जाए। हमने दूसरों को माना हुआ सुपर पावर, दूसरा कोई सुपर पावर नहीं इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ जो सुपर पावर है वो है खुदा, उसको मान जाए। तो दूसरी बात उन्होंने ये की कि ये जो आपको खुदा ने नेमतें दी हुई है ना, तोहफे दिए हुए, इन तोहफों से जो है वो खुदा के गुनाह को ना करें बल्कि उसकी इताअत करें। हमारे पास पैसा है, पैसे को अगर आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे खुदा के इताअत में होगा। अभी आपके पास मंडे आया, डे ऑफ था, खुदा ने नेमत दी, डे ऑफ है, उसको हमने मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मसलन हमने सो के गुजार दिया, खा पी के गुजार दिया, खुदा ने नेमत दी थी क्या, उसको अच्छे कामों में इस्तेमाल करें। हमने उसको, उस नेमत को ज़ाया कर दिया। खुदा जो नेमतें देता है उनको ये सबब ना बने, मसलन अगर खुदा ने हमें कोई नेमत दी अगर वो ना देता तो हो सकता हम उसकी नाफरमानी ना करते। तो जो खुदा की नेमतें दी हुई हैं उसको गलत इस्तेमाल ना करें। अभी जो हमारे पास फुर्सत है, ये खुदा की नेमत है, इस फुर्सत को खराब ना करें। अच्छा उसके बाद इमाम ने उस खत में लिखा कि जो भी अहलुल बैत अलैहिस्सलाम को मानता है ना उसकी इज्जत करें, जो हमारे से कहते हैं ना कि हमें उनसे प्यार है उसकी इज्जत करें। कहते हैं कि आपके लिए जरूरी नहीं है कि वो बंदा सच्चा हो इस मोहब्बत में या ना हो, आप उसकी इज्जत करें। सही, आप उसकी इज्जत करें क्योंकि आपको जो है ना वो अल्लाह सुब्हान व तआला इनाम देगा आपकी नियतों के ऊपर, और अगर वो बंदा सच्चा नहीं है अपनी मोहब्बत में तो खुदा उसको अजाब देगा उसकी वजह से। अब जो अगर फलसफा देखा जाए तो आइमा अलैहिस्सलाम ने हमें उन्हीं के प्यार के अंदर इस तस्बीह में परोया हुआ है। मुझे नहीं है कि आपको कोई बंदा मिले सलावत पढ़ रहा है, इमाम से मोहब्बत करता है, आप उसकी इज्जत करें। हम जो इनकलाबी लोग हैं ना ये थोड़ा सा सख्त दिल हो जाते हैं, क्या है सख्त दिल हो जाते हैं कि हत्ता वो लोग मानते भी हैं इमाम हुसैन को, अज़ादारी भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन हम उनके साथ थोड़े सख्त दिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नज़रिया, उनका देखने का अंदाज हमारा नहीं है। ये ना करें, मसलन ये कि ये शहीद आरिफ के ज़माने में भी होता था, आगा साहब जो है वो अपने सुन्नी भाइयों के साथ जाके मिलते होते थे, उनको मुतहद करते थे, उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रवैया रखते थे। जो अपने लोग होते थे वो जब उनके साथ बैठ जाते थे तो ये आगा भी ये है, ये आगा भी वो है, इस तरह से ये है, ये करते कराते आगा कहते होते थे कि यार ये सब लोग जो है वो ख़राब हैं, कह करा के जो इस पूरी दुनिया में ठीक रह जाता है वो या मैं हूँ या आप हैं, बाकी सारी दुनिया ख़राब है, कर करा के जो रह जाता है या मैं हूँ या आप हैं, वही लोग जो मसलन बैठे वो आगा इस तरह या आगा इस तरह। तो सब अपनी जो दिल है ना उसको सख्त ना करें। जो मानता है अहलुल बैत अलैहिस्सलाम को, कहता है कि मैं मानता हूँ, उसकी इज्जत करें, एहतराम करें, उसका साथ प्यार करें। आपका जो प्यार होगा ना उसके साथ इज्जत होगी, वो उसको चेंज करेगा, उसे कहेगा कि यार ये जिस तरह से आइम्मा को मानते हैं मुझे भी चाहिए मैं आइम्मा को उस तरह से मानूँ, उसका नज़रिया बदल जाएगा। अपने आप को ककून में ना रखें, अपने आप को इस शल में ना रखें। इनकलाबी होना ये नहीं है कि आप एक खुद ग्रोह बन जाएं, बल्कि क्या है कि आप वो मैग्नेट हों कि जिससे बाकी के सारे लोग आपके इर्द गिर्द आपके महावर में आ जाएं, और उससे भी जो है जो पीछे रह गए वो आपके साथ आ मिलें, और जो आगे चले गए गुलू करते हैं इमाम अलमशाम के अंदर वो वापस आ जाएं। तो अगर आप देखें इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह की जो शख्सियत है वो ऐसे ही, उन्होंने जो पीछे रह गए थे उनको ले आए साथ, जो गुलू करते थे वो वापस आ गए। तो अपनी शख्सियतों को ऐसा बनाएं, तो उसमें ये होगा कि जो कम्युनिटी के अंदर फिर हमारे ऊपर कोई हमारे ये जो मसाइल चल रहे हैं इनकलाबी और रवायती और ये सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। इनकलाबी आप तब हैं जब आप किसी को मुनकलिब करें या आप मुनकलिब हों। तारीफ अगर सुनना चाहे ना तो ये है इनकलाबी की तारीफ, वो खुद मुनकलिब हो और दूसरे को मुनकलिब करे, किसकी तरफ, खुदा की तरफ। अगर खुद को मुनकलिब किया और दूसरे को शैतान की तरफ मुनकलिब कर दिया तो वो इनकलाबी नहीं है। मुनकलिब हो वो खुद अंदर से खुदा की हुकूमत को अपने ऊपर लेकर आए और दूसरे जो हैं वो मुनकलिब हो और उनके ऊपर भी खुदा की हुकूमत आए। सही, तो किसी की तोहीन हमें नहीं करनी चाहिए। अगर ठीक है वो झूठा है, कहता है कि मैं इमाम अली को मानता हूँ, लेकिन इमाम अली को मानने की जो शरायत है वो पूरा नहीं करता, वो इताअत नहीं करता, वो वैसे ही जो है वो लगा हुआ है, बस मैंने कह दिया अली वलीउल्लाह मातम कर लिया और मैं जो है वो जन्नत में चला जाऊंगा, बेशक उसका ऐसा हो, ठीक है, लेकिन आपको इमाम कह रहे हैं कि आपने ये काम नहीं करना कि उसकी तोहीन हो, बल्कि क्या उसको आपने इज्जत देनी है। और बाकी अल्लाह सुब्हान तआला उस बंदे के साथ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक और है, ये जो है ना आयतुल कुर्सी के अंदर के अल्लाह सुब्हान तआला कहता है कि भाई अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, के भाई अल्लाह सुब्हान तआला जो मोमिनीन है उनका है वली है। वली का मतलब समझते हैं कि अगर आप वो कोई बंदा भी, मसलन अगर मैं आप मेरे वली बन जाए, मसलन अगर मैं बात करूँ, कोई मुश्किल आएगी ना तो वो आपकी जिम्मेदारी उस मुश्किल को दूर करना, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती। कोई मुश्किल आई, कोई बंदा मुझे मारने आया, कोई भी मसलन काम है, पैसा चाहिए, कोई भी मुश्किल है, जो वली है मेरा वो उस मुश्किल को हल करेगा। अल्लाह वली होता है किसका? मोमिनीन का। कोई बंदा है आके मेरी तोहिन करता है, आपकी तोहिन करता है, अगर अल्लाह मियां आपका वली है ना तो क्या होगा, बदला कौन उतारेगा? अल्लाह सुब्हान तआला लेगा। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको कोई खुद ये है कि उसको जाके नहीं, ठीक है आपने बेहतरामी की, कुछ मसला किया, कुछ और किया, मेरा वली कौन है? अल्लाह सुब्हान तआला, वो खुद ही देखे। अल्लाह सुब्हान तआला वली होता है मोमिनीन का, उनको क्या करता है, उनको उनको जुलमात से निकाल के नूर की तरफ ले जाता है। कि क्या ये जो जुलमात हैं, वो इमाम ने उसको आगे बताते हैं कि ये जो जुलमात हैं ये हैं गुनाह, ये हैं गुनाह। अल्लाह सुब्हान तआला जिसका वली होता है उसको उन गुनाहों की जुलमत से निकाल के नूर की तरफ ले जाता है। और वो लोग कौन होते हैं, मोमिन कौन होते हैं? वो होते हैं कि जो आइमा अलैहिस्सलाम के ऊपर के साथ मोहब्बत करते हैं, उनको मानते हैं, गुनाह जो है वो उनके धुल जाते हैं, उस मोहब्बत के साथ धुल जाते हैं, वो तोबा कर पाते हैं, उस डार्कनेस से बाहर निकल आते हैं। ये जो कुफार है कि वो क्या है, अल्लाह मियां उनको नूर से निकाल कर किधर ले आता है, जुलमात में, नूर से निकाल के जुलमात में ले आता है काफिर को। आप कहेंगे यहाँ ये काफिर पहले नूर में कैसे आया, सवाल है ना, काफिर तो कुफ्र किए हुए, वो तो है ही जुलमात में, वो तो उसने कुफ्र किया, उसने खुदा को नहीं माना, वो तो मुशरिक है, तो वो तो जाहिर है कि डार्कनेस में है। डार्कनेस है तो खुदा मोमिन को लेके जाता है, काफिर को तो वो डार्कनेस से नूर की तरफ नहीं, बल्कि वो नूर से उसे डार्कनेस की तरफ लेके आता। तो यहाँ पे जिन लोगों का जिक्र हो रहा है ये वो लोग हैं कि जिनके ऊपर तमाम हुज्जतें तमाम हुई, जिनके ऊपर खुदा ने कुरान को नाजिल किया, जिनके ऊपर खुदा ने रसूल को नाजिल किया, रसूल के वो मानने वाले हैं, खुदा को वो मानने वाले हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनकी वो मोहब्बत अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के साथ नहीं है, उनको नहीं मानते। क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता खुदा उनको क्या करता है, नूर से जुलमात में ले जाता है। और ना कि सिर्फ वो लोग जिन्होंने रसूल को मान लिया और अल्लाह को मान लिया, इसके अंदर वो लोग भी हैं जिन्होंने रसूल को भी माना, अल्लाह को भी माना, साथ में आइम्मा की वलायत को भी माना, लेकिन वो सच्ची मोहब्बत नहीं रखी। तो इतनी ज्यादा नेमतों के साथ नूर के साथ उनको किधर जाना पड़ता है, जुलमात में। अब वो कौन है वो लोग, उनको खुदा ने मोमिन नहीं कहा, खुदा ने उनको काफिर कहा है। ऐसा ना हो कि हम जो कि इतना नूर है हमारे पास, 12 अइम्मा का नूर है, इतनी ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मैं अपनी बात करूं इतना ज्यादा मसलन ये कि इंफॉर्मेशन होने के, इतनी ज्यादा तो नहीं चले अपनी बात, गलत मिसाल दे दी, लेकिन थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होने के साथ साथ दर्स वगैरह ये वो सारा कुछ। और अगर मैं रोजे माशे में खड़ा हुआ हूँ, तारीकी के अंदर चेहरा जो है वो काला है, मार पीट रहे हैं, आप हमें देखेंगे कहेंगे ये देखो बड़ा नूरानी, ये वो, करता था, अल्लाह मैंने इसको नूर से जो है वो जुल्मत में ले आया, कुछ काम नहीं आया। तो आप सब जो कुछ आपको पता है ना वो नूर है, जो आपको पता है ना वो नूर है, उस नूर से आप कहीं जुल्मत में ना चले जाए। ठीक है, तो ये छठे इमाम ने, तो सलावात पढ़ते मोहम्मद बस 20 मिनट रह गए आपकी जहमत तमाम। अब जो बात होगी वो होगी, अच्छा गुनाहाने कबीरा की डेफिनेशन क्या है। अब ये डेफिनेशन हम आपको बता देंगे जो आगा ने लिखी हुई है, उससे ये ना हो कि अब आप हर गुनाह करते हुए देखें क्या ये इस डेफिनेशन में अगर फिट होता है नहीं होता, अगर नहीं होता तो हम कर लेते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको बताया पहले भी हर गुनाह जहर है, अब आप कहें कि एक कतरा जहर का कोई खाना चाहेगा, मैं अगर यहाँ पे हम प्रैक्टिकल नहीं ना ये एक्सपेरिमेंट कर सकते, वल्ला लेकर आते ना जहर सांप की मसलन, कोई बिच्छू की या कोई सांप की जहर ला के कहते हैं सर भी चाय है, साथ में एक रख देते हैं वो ड्रॉप वाला नहीं होता, क्या सा बस एक एक जरा कतरा भी साथ में चाय के डाल के पिए, कोई राजी नहीं होगा, कोई नहीं कहेगा कि मैं ये काम करूंगा। गुनाह है जहर, बड़ा हो या वो छोटा हो। सिर्फ इसकी डेफिनेशंस जो हैं वो इसलिए हैं कि इंसान ये बात समझ जाए कि कुछ ऐसे गुनाह हैं कि जिनका के माफी जो है वो बहुत मुश्किल है, उसका गुनाह का माफ होना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसको जो गुनाह सगीरा है उसकी माफी जो है वो थोड़ी सी आसानतर है, कुछ ऐसे गुनाह है कि जिसकी माफी बहुत मुश्किल है, और अगर ऐसे गुनाह हम कर बैठे तो फिर मुश्किल है कि हमें खुदा माफ करें। खुदा की रहमत बहुत बुजुर्ग है, लेकिन उसने साथ साथ में वो आदिल भी है, रहमान भी है रहीम भी है, लेकिन वो आदिल भी है, इस बात को ना भूलें। सही, अच्छा पहली जो उन्होंने कैटेगरीज जो हैं वो बताई हैं चार, तो पहली डेफिनेशन जो हम आपसे वो उन्होंने आगा ने लिखी वो ये कि हर वो गुना गुनाह कबीरा में शामिल होता है जिसका कि स्पेसिफिकली कुरान के अंदर नाम गुनाह कबीरा डाला गया है, जिसे कि ग्रेटर सिन कहा गया है, जिसे कि गुनाह कबीरा कहा गया है। और हदीस के अंदर उन्होंने कहा कि है कि उसके जो नंबर है ना वो 40 है, बल्कि एक सीट से 40 से ज्यादा है, और उसको जो है वो आयमा अलैहि सलाम ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस के अंदर जो है उनको बताया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला आइंदा जो है वो आगे कहते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। दूसरी डेफिनेशन ये है कि जो कुरान और हदीस में उन्हें कहा नहीं गया कि वो गुनाहे कबीरा है, बल्कि उस गुनाह पे अजाब का वादा दिया गया है। एक गुनाह है किया तो वो जहन्नम में बंदा चला जाएगा, सही कि एक्सप्लिसिटली नहीं कहा गया कि वो गुनाह है कबीरा है, बल्कि उस गुनाह के करने वाले को वादा दिया गया कि उसको जहन्नम में डाला जाएगा भेजा जाएगा। और अगर एक्सप्लिसिटली उसका नहीं कहा गया कि जहन्नम में डाला जाएगा, लेकिन उसके माने से ये पता लगता है कि उसे जहन्नम में डाला जाएगा, तो वो भी गुनाहे कबीरा में शामिल होता है। तो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहदीस के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस के अंदर, तो एक हदीस की उन्होंने एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहा कि रसूल ने कहा कि बेशक खुदा वो जो कि कवि है, जो कि ताकत रखता है, और उसका रसूल जो कि उसका भेजा हुआ है वो आग कर देता है उस बंदे को कि जो जानते बूझते जो है नमाजों को छोड़े, जानते बूझते जो बंदा नमाजों को छोड़ दे। तो रसूल ने कहा कि इसके अंदर कोई शक नहीं कि खुदा और उसका रसूल, खुदा जो कि कादिर है और वो उसका रसूल जो कि उसकी तरफ से आया है, वो उस बंदे को आग कर देता है। यानी अब इसमें कोई वो लिखा नहीं गया कि अजाब में जो है वो जहन्नम का अजाब आए, लेकिन ये मतलब साफ जाहिर है भाई माँ बाप का आग किया वो शख्स जो है वो जहन्नम ही है, तो जो खुदा का और रसूल का आग किया हुआ है वो तो जहन्नमी होगा। کون سا شخص جو جانتے بوجھتے نگلیکٹ کرتا ہے, نہیں پڑھتا نمازوں کو, تو یہ نماز کی نگلیکٹ کرنا نماز کس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ گناہ کبیرہ کے اندر, یہ صغیرہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اب ہم نے کتنے گناہ کبیرہ کیے. ابھی تک تو ہم یہی سمجھتے تھے نا کہ شراب نہیں پی تو گناہ کبیرہ نہیں کیا, کسی کو قتل نہیں کیا تو گناہ کبیرہ نہیں کیا. اب دیکھیں کہ کتنے گناہ نے کبیرہ کیے, کتنی دفعہ ہوا کہ نماز کو چھوڑ دیا حالانکہ جانتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے. نماز کو قضا کرنا حرام ہے. آپ دیکھیں آئمہ کیا غیر معصوم کی زندگی میں, دیکھیں یہ بات اب سمجھ میں آ رہی آغا کہ کیا تھی بات وہ کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس ہسپتال کے اندر آخری زندگی کے لمحات کے اندر وہ شخص خون کی بوتلیں لگائے ہوئے آئی وی لگائے ہوئے کہتا ہے میں نے ابھی نماز پڑھنی, میں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی, میں نماز کو قضا نہیں ہونے دوں گا. تو دیکھیے آپ نے اس شخص کے لیے نماز, واقع نماز کو قضا کرنا اس کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ میں سے ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی آغا کے بہت زیادہ تقوی کا لیول تھا, تو دیکھیں آغا نے کس طرح سے اس آخری لمحات کے اندر بھی خون کی ڈرپ لگی ہوئی ہے اور وہ لوگوں اور کھڑے ہو کے نماز پڑھے. ہاں ہاں تقوی بہت زیادہ ہے, اس حساب سے نماز کو آغا دیکھ رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ ہے, اس کو میں قضا نہیں کر سکتا. اب فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی جانتے بوجھتے وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے, اور وہ بندہ جو کہ آگ کیا گیا ہو خدا کی طرف سے رسول کی طرف سے, وہ ہم بننے کو بڑی آسانی سے تیار ہو جائے, کیسے ہو سکتا؟ نماز نہیں, ہم میں سے کسی کی اگر نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہونی چاہیے. یہ اگر آپ کو پہلے نہیں تھا پتہ تو یہ اب جان جائیں کہ گناہ کبیرہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو قضا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اللہ. تیرہ منٹ ہو. تیسری جو کیٹیگری وہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جسے کہ کلیئرلی گناہ کبیرہ نہیں کہا گیا اور اس کو جو ہے وہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا قرآن اور حدیث کے اندر, لیکن اگر کسی ایک گناہ کو اسپیسیفائی کیا ہوا ہے اور کوئی شخص ایسا گناہ کرے کہ اس کے عذاب میں اس گناہ سے زیادہ عذاب دیا جائے, کہا جائے کہ اگر ایک بندے نے یہ گناہ کیا وہ گناہ کبیرہ ہے, لیکن اس نے اگر یہ گناہ کیا تو یہ اس کا دوسرا گناہ اس کے پہلے گناہ سے بدتر ہے, تو یہ آٹومیٹکلی دوسرا گناہ کس کیٹیگری میں شامل ہوگا؟ گناہ کبیرہ میں. صحیح. مثلا قرآن کے اندر ہے کہ وہ شخص جو کہ فساد پھیلاتا ہے, وہ شخص جو کہ فساد پھیلاتا ہے اس کا یہ فساد پھیلانا کسی کو قتل کر دینے سے بدتر ہے. جو شخص فساد پھیلاتا ہے اس کا یہ گناہ جو ہے وہ کسی کو قتل کر دینے سے بدتر ہے, اور خدا نے قرآن کے اندر کہا ہوا ہے کہ جو شخص ایک نفس کسی نفس کا جو کہ انسنٹ نفس ہے اس کو اگر قتل کرتا ہے تو اس نے ایسے کیا جیسے کہ پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا. تو اب یہ فساد پھیلانا کیا ہے, اس کو ایکسپلیسٹلی قرآن نے نہیں کہا, گناہ کبیرہ کا لفظ نہیں استعمال کیا یا اس کے لیے عذاب کا نہیں استعمال کیا, لیکن اسے کہا کہ یہ اس سے بدتر ہے. تو ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو شخص فساد پھیلا رہا ہے وہ گناہان کبیرہ میں سے ہے. ہمیں فساد نہیں پھیلانا چاہیے, ہم بہت ساری معاملات جو کہ اصلاح کے ہوتے ہیں نا اس میں فساد پھیلا دیتے ہیں. یہ ہے نا آیت اللہ شہید مختار رحمۃ اللہ کی بات یاد میں آ رہی ہے کہ آغا نے کہا کہ اگر ایک سکیل رکھا جائے نا جس کے اندر کے پوری دنیا کے گناہ ہوں, جو کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے گناہ کی، ایک سکیل. دوسرے سکیل میں وہ گناہ رکھے جائیں کہ جو لوگوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کرتے ہوئے ایک انجام دی. تو انہوں نے کہا کہ وہ پلہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کرتے ہوئے لوگوں نے انجام دی ہے، وہ بھاری ہوگا ان گناہوں سے جو کہ خدا کی نافرمانی میں ہوئے. سمجھے؟ تو ہم اگر اصلاح کے حوالے سے فساد پھیلا دیں، مسجد پھیلا دیں، تو وہ اصلاح نہیں ہے بلکہ وہ اس فساد کے اندر اضافہ کرنا ہے. ہماری اصلاح دیکھیں، کچھ لوگ تو آپ جو کچھ کر لیں، رسول کے زمانے میں بھی ایسا تھا، کچھ لوگ تو ایسے ہیں آپ جو کچھ مرضی کر لیں انہوں نے بدلنا نہیں ہے. وہ ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلیٰ سمعہم وعلیٰ ابصارہم، ان کا وہ حال ہے، ان کے اوپر موڑ لگ چکی ہے، نہ ان کا کان کام کرتا ہے، نہ ان کی آنکھ کام کرتی ہے، نہ ان کی عقل کام کرتی ہے، ان کی کوئی چیز کام ہی نہیں کرتی ہے. اب وہ آپ ان کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لیں اور وہ آ کے ان کے لیے قرآن بھی پڑھیں نا، تو پھر بھی وہ اس کو ماننے والے نہیں ہیں. وہ تو لوگ ہیں. اب ان لوگوں کا کہ بھئی یہ اس کے اندر نہیں، آپ کس کی بات ہو رہی ہے کہ کس کے اندر فساد نہ پھیلائیں؟ وہ لوگ جو کہ فینس پہ ہیں، وہ لوگ جو فینس پہ ہیں نا، ان کو ہماری اصلاح ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اگر 50-50 ہے نا، ایسے ڈاور ڈول ہیں، تو وہ بجائے اس طرف جانے کے اس طرف آ جائیں. اگر ہم نے اصلاح ایسے کی کہ جو 50-50 تھا وہ بیچارہ بھی پہلا، اگر 50-50 تھا اسے نہیں، تو وہ اب 60-40 ہو گیا، 80-20 ہو گیا دوسری طرف. وہ کیا ہے؟ فساد پھیلانا ہے، اور فساد پھیلانا گناہانے کبیرہ میں سے. اگر ہم یہ کہہ دیں نا کہ بھائی فساد تو وہ امریکہ اور اسرائیل اور وہ لوگ پھیلا رہے ہیں، ہم تو مسچف کرنے والے نہیں، ہم تو کون سے لوگ ہیں جو اصلاح کرتے ہیں. قرآن میں بھی ہے کہ وہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ آپ لوگ فساد نہ کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیات ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں. وہ اللہ میاں کہتے ہیں نا، یہ لوگ ہی وہ ہیں جو کہ فساد پھیلانے والے ہیں. اب اس کی جو اطلاق اس کے اوپر جو لوگ منطبق ہوتے ہیں وہ ہیں امریکہ اور اسرائیل. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جی فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو پیس، ہمیں تو نوبل پرائز مل رہا ہے پیس کا، ہم تو مثلاً پیس کے لیے ہیں، ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے، ہمارے پاس تو پروف بھی ہے کہ ہمیں پیس کا پرائز مل رہا ہے. لیکن اللہ میاں کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں حقیقت میں فساد پھیلا رہے ہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں، یہ صلح کرنے والے نہیں، یہ پیس والے نہیں، یہ بلکہ وہ ہیں جو کہ فساد کہلاتے ہیں. یہ ایک کیٹیگری، یہ تو کھلم کھلا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی وہ جو ہے وہ جہان بینی کی ایک بہت دقیق نگاہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہر بندے کے سامنے شامل ہے. اب وہ لوگ جو ختم اللہ والا قلوب ہیں والا سامعین والا ابصار ہیں والے لوگ ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو نوبل پرائز دے دیں پیس کا، کہ نہ جن کی آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ جن کے کان کام کرتے ہیں، نہ جن کی عقلیں کام کرتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے اس کو دے دیں. لیکن جس کی اگر تھوڑی بہت آنکھ کھلی ہوئی ہے، اس کے کان کھلے ہوئے ہیں، وہ کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ اس بندے کو جو ہے وہ نوبل پرائز ملنا چاہیے پیس کا. یہ تو کھلم کھلا بات ہے. اب جو جہاں پہ دقیق نظر چاہیے نا، وہاں پہ کیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا کہ جو اصلاح گر ہیں، جو اصلاح کے نام پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، اگر فساد ہوا دیں. جی ٹی اے کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اصلاح کروا رہے ہیں، اصلاح کہتے ہیں کہ ہم نے کرنی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ فساد ہوتا ہے. کتنے عرصے سے چل رہی ہے بات ہے. تو اب یہ جو ہے نا، اس کے لیے ایک دقیق نظر چاہیے، اس کے لیے ہمیں پریسائز ہونا پڑے گا، دیکھنا چاہیے کہ یہ آیا واقع میں اصلاح ہے یا فساد ہے. یعنی ہم نے انقلاب سے اتنے لوگوں کو دور کر دیا. اچھا آپ بتائیں نا، ہم نے کتنے لوگوں کو نزدیک کیا اور کتنے لوگوں کو دور کیا؟ ہم نے جتنے لوگوں کو نزدیک کیا وہی تھے جو پہلے سے نزدیک تھے. 10-15 لوگ تھے، وہ پہلے سے نزدیک تھے، ان کو آپس میں اکٹھا کرنا کوئی بری مشکل بات نہیں ہے. ہم نے کتنے لوگوں کو لے کر آئے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی آغا صاحب آپ کو تو سننے والے چار ہوں گے. یہ ہے نا کہ بھائی وہ جو ہوتے ہیں وہ تو مثلاً کہتے ہیں کہ جی ان کو تو سننے والے چار ہوتے تھے، 10 ہوتے تھے، 15 ہوتے تھے، 20 ہوتے تھے. کیا کیوں ہوتے تھے 10-15 چار؟ اس لیے کہ وہ بس وہی لوگ ہدایت چاہتے تھے؟ نہیں. ایک یہ کہ دوسروں کو پتا نہیں تھا. اگر آغا جعفر کے بارے میں دوسروں کو پتا ہوتا کہ آغا صاحب ہیں اور درس دیتے ہیں، تو آپ کے خیال میں چار لوگ ہی بیٹھے ہوتے ہیں؟ بہت سارے بیٹھے ہوتے ہیں. लेकिन जो उनके पास 4-10 आते थे ना, उन्होंने कहा कि ये इस बंदे को हम ही घेरे रखें, इसे जितना फायदा पहुंच सकता है हमें ही पहुंचे, दूसरों को नहीं। ये उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि जो अगर किसी हीरे को ढूंढ लें, तो उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि दूसरों को भी लेकर आए कि यार हीरा है। उस बंदे की नहीं होती, अगर जाफर की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जाके कहे भाई आओ मेरे दर्श में, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि जो उनके दर्श में जाते थे दूसरों को भी लेकर आए। हमें ये देखना है कि हमने कितने लोग जो कि दूर थे उनको हम नजदीक लेकर आए, क्योंकि जो अइम्मा की अहादीस हैं, जो इस्लाम में नाबे मोहम्मद ये है, जब वो लोगों को पता लगता है ना, अब जो 8 बेटे थे इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह के, जो उनके रूहानी बेटे थे, अगर वो यही करते कि इस आका को बस हमने अपने तक ही रखना है, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने जाके बताया लोगों को कि ये है उनके, ये उनका फलसफा है, ये उनकी आइडियोलॉजी है, इस तरह से वो सोचते हैं, इस तरह से होना चाहिए। उन्होंने किया तो लाखों में लोग, 1952 में जब इनकलाब पेरूज हुआ है, जब इनकलाब जीता है, लाखों लोग जो कि शेव्ड दाढ़ियां, कोई दाढ़ी नहीं उनकी, कोई शेव्ड लोग जो मसलन के शाह के जमाने में वो कोई ऐसे नहीं थे, वो लोग मुनकलिब होके सड़कों पे आ गए, अपनी जान को हथेली पे रख के आ गए। ये आगा की कोशिश थी, लेकिन उनके 8 बेटे जो रूहानी बेटे थे उनकी कोशिशें भी थी, और उनके साथ साथ दूसरे लोगों की कोशिशें भी थी, और इनकलाब आया और पेरूस हो गया। हमें मासिस को जो है वो उनके साथ, वो जो बंदा काफिर है उसको तबलीग करनी है, अपनों को तबलीग कर करके, यानी अगर जो बंदा नहीं जानता इन चीजों को उनको जाके पकड़े, अपनों को कर करके क्या होता है, बजाय इस्लाह करने के हम एक दूसरे साथ लड़ बैठने, ऐसा नहीं करना। हुआ ये थोड़ा सा हमारे साथ मुश्किल है, और इस मुश्किल को जो है वो हमने हल करना है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि वाकई इस्लाह हो, तो फिर उसके साथ फसाद नहीं होना चाहिए, और अगर फसाद है तो इसका मतलब क्या है, गुनाह कबीर है और हम इस्लाह नहीं कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक देगा कि हम उसकी इताअत कर सकेंगे, और अपने आप को ऐसा बनाएंगे कि हम वाकई जो है वो इस्लाह कर सकें और फसाद से दूर रहें, और ऐसी इतनी ताकत हमारे अंदर आ जाए कि आज के बाद, ये मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, कि आज के बाद हम कम से कम जो गुनाह कबीरा ना करें वो ये है कि हमारी नमाज कोई कज़ा ना हो। हमारी हर नमाज जो है वो ठीक है, अगर वक्त पे ना हो तो कम से कम वो कज़ा ना हो, ताकि हम गुनाह कबीरा से बच सकें। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह से खुदा ने हमें वादा दिया है कि वो रसूल उसका भेजा हुआ दीन हक पर वो आएगा और इस दीन को जो है वो गालिब करेगा बाकी तमाम अदियान पे, और दुश्मनान जो हैं अगर इस बात को अच्छा भी नहीं समझते, तो वो इनकलाब जो कि खुदा लेकर आया, जिससे कि मुशरिकीन जो हैं उनको नाराहत हैं, ईरान का इनकलाब जो कि आया, इस्लामी इनकलाब, जिससे कि मुशरिकीन नाराहत हैं, इंशाल्लाह ऐसा होगा कि वो इनकलाब इस्तेमरार पाएगा, चलेगा, और अगर कभी उस इनकलाब को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जान को हाजिर करेंगे। खुदा हमें दुश्मनान इस्लाम से बचाए, उनको नीस्त व नाबूद करें, इमाम के आने में जल्दी करें, हम उनके ग़ुलामों में से, उनके इंसानों में से शुमार किए जाएं, और हमें खुदा सूरह अल असर के मिज़दाक के अंदर शामिल करे कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वल असर إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل